श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले
प्रभुपाद कहते हैं मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, चाहे वो भारत विश्व के किसी कोने में क्यों ना हो, अपना पैसा खर्च करके उसके पास पहुंचूंगा और उसे श्रीमद् भागवतम सुनाकर वापस अपने स्थान जाऊंगा। अब सोच सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम कितना महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते हैं कि इस संसार में विशेष रूप से कलयुग में बद्ध जीवों का हित किस चीज से हो सकता है, तो वो केवल एक ही चीज से हो सकता है, तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम को सुनना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जोर देते थे नित्यं भागवत सेवया, कि कुछ भी हो जाए प्रतिदिन भागवतम को सुनना चाहिए। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है कई सारे शास्त्रों में वर्णित है। इवन स्वयं श्रीमद् भागवतम अपने बारे में बोलता है, अपनी महिमा को बोलता है। भागवतम में कहा गया है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने उचित रूप से श्रीमद् भागवतम रूपी इस कृष्ण को पकड़ा है तो उसे किसी अन्य शास्त्र को, किसी अन्य ग्रंथ को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। कि मान्य शास्त्र विस्तर है, किसी और शास्त्र को पढ़ने की समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो भागवतम साक्षात कृष्ण है, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थक है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि ये जो भागवत साक्षात कृष्ण है और हर एक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का विशेष रूप से आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आप देखो परीक्षित महाराज का जीवन, जब शुक्रदेव गोस्वामी से वो सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम को, तो जब दशम स्कंध का वर्णन करने जा रहे थे शुक्रदेव गोस्वामी, और विशेष रूप से किसका वर्णन करने जा रहे थे? कृष्ण का। क्योंकि परीक्षित महाराज ने कहा अभी तो मैंने बहुत सारे वंश विस्तार हो, ये बहुत सारे राजाओं के बारे में बहुत सुन लिया, उनके वंश विस्तार आदि के बारे में सुन लिया, अभी जो भागवत में भागवतम के जो एक में हीरो है, कौन है भागवतम के हीरो? कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भागवतम के जो एक में हीरो है कृष्ण, उनके बारे में आप मुझे सुनाओ। आपने पहले बहुत सारे स्कंदों में अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है, लेकिन वो कैसे किया है? थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन आप जो कृष्ण है उनके बारे में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसलिए बाकी सारे अवतारों का वर्णन एक ही स्कंद में कई अवतार इकट्ठा आ गए हैं, लेकिन दशम स्कंद रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? कृष्ण के लिए। पूरे 90 अध्यायों में केवल 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 कृष्ण का उन्होंने गुणगान किया है। शुकदेव गोस्वामी ने सोचा अरे ये तो अद्भुत श्रोता मुझे मिला है, क्योंकि कृष्ण कथा तब निकलती है बाहर जब ये दोनों योग्य हो। एक श्रोता भी उतना ही क्वालिफाइड होना चाहिए और वक्ता भी उतना ही क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए और बीज भी सही होना चाहिए, तो उचित रूप से पौधा निकल आता है। तो उसी प्रकार से यदि श्रोता कृष्ण के बारे में सुनने के लिए एक चिंता और लालायित है और वक्ता भगवत चेतना से परिपूर्ण है, तो निश्चित रूप से वहां किसका प्राकट्य होगा? कृष्ण का प्राकट्य होगा। और यही थे ये दो लोगों में ये गुण था, शुकदेव गोस्वामी में और दूसरा परीक्षित महाराज में। शुकदेव गोस्वामी का आसक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति नहीं थी। इवन वो वस्त्र भी नहीं पहनते थे। अब सोचो फिर कितने वो ये थे, आत्माराम हुए थे, केवल आत्मा में ही भ्रमण करने वाले। आत्माराम का मतलब है कि जो आत्मा में ही आनंद लेते हैं। अभी हमें आनंद देने के लिए कई सारी चीजें चाहिए, थोड़े अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हमें आनंद आता है, फिर उसके लिए बाकी कई सारी चीजें एकत्रित करते हैं, जिनको एकत्रित करके हम आनंद का अनुभव करते हैं, फिर हमारे जीवन में दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, लाइफ पार्टनर, तो कुछ और आनंद बढ़ता है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी के जीवन में कोई और नहीं था, उनके जीवन में कौन थे? केवल कृष्ण थे। इसलिए ऐसी जो कृष्ण कथा है वो वास्तव में इस बद्ध जीव के लिए परम औषधि है। इसलिए महाराज कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र उन्होंने लिखा है, प्रभुपद का बहुत फेवरेट उसमें से एक श्लोक था, प्रभुपद हमेशा उसे गाया करते थे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्य उभे विशत मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। तो मुकुंदमाला में वो कहा करते थे राजा कुलशेखर, वो कहते हैं और एक श्लोक में कि इदं शरीरं परिणाम पेशलं, कि अरे मूर्ख व्यक्ति ये शरीर निश्चित रूप से खत्म होने वाला है, शतसंधि जर्जरा, और इसकी इतनी सारी हड्डियां जॉइंट्स हैं, एक दिन ये सारी हड्डियां क्या करने वाली है, एक साथ आवाज करने वाली है, शतसंधि जर्जरा, किम औषधं पृच्छसि मूढमते। अरे मूर्ख व्यक्ति, इतनी सारी विपदा आने वाली है जीवन में, तो दवाई पूछो ना, क्या दवाई है? तो वो कहते एक ही दवाई है, कृष्ण रसायन पिवा। वो कहते क्या पियो उसके लिए? कृष्ण रसायन। तो ये कृष्ण रसायन कहाँ रखा है? श्रीमद् भागवतम में रखा है। तो भागवतम ये परम औषधि है, और ये औषधि किसने ढूंढ निकाली? एक प्रकार से महाराज परीक्षित ने, मृत्यु के लिए है ये परम औषधि, महाराज परीक्षित ने ढूंढी, शुकदेव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने उसका पान किया। और दशम स्कंध के शुरुआत में वो कहते हैं भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामा, कि ये औषधि किस चीज के लिए है? भव सागर से पार होने के लिए। ये श्रीमद् भागवतम की कथाओं को निरंतर सुनते रहना चाहिए, बल्कि इसका तभी लाभ हो सकता है यदि पूर्ण हम लाभ उठाना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम का, तो उसके लिए तीन चीजें परम आवश्यक है। एक है, सबसे पहले क्या है? श्रवण करना, सुनना। भागवतम तभी हमारे जीवन में उतरेगा, तभी प्रवेश करेगा, जब पहली स्थिति है कि हम एक चित होकर एकाग्रता से उत्कंठित अपने कंठ को ऊपर करके सुनना, वो श्रवण। और दूसरा है मनन। तो श्रवण करेंगे, यदि मनन नहीं करेंगे तो वो अंदर घुसेगा नहीं, हृदय में उसको भेजना है। तो क्या करना होगा? जो भी हमने सुना है उसके बारे में सोचना होगा, उसके बारे में चिंतन करना होगा, उसके बारे में मनन आदि करना होगा। हाँ, जब ऐसा करते हैं हम, तो जो सुना है वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और इतना ही नहीं, तीसरा धरातल है, उसको कहते हैं निधि ध्यान। उसका मतलब है कि जो भी हमने सुना है, उसके ऊपर जो भी हमने चिंतन किया है, उसको हमारे जीवन में लागू करना होगा, तभी भागवतम पूर्ण रूपेण हमारे हृदय में, हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। इसलिए तीन चीजें शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि परम आवश्यक है, बल्कि भागवतम की विशेषता है, भागवतम किसी का पक्षपात नहीं करता। भागवतम साक्षात कृष्ण है, कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं सर्वोहम सर्वभूतेषु नमे देशस्ति न प्रियः, मैं सबके लिए क्या हूँ? एक समान हूँ, मैं किसी से अधिक प्रेम भी नहीं रखता और किसी से द्वेष भी नहीं करता, सबके साथ मेरा एक समान व्यवहार है। तो भागवतम भी किसी की बाजू नहीं लेता है, किसी की साइड नहीं लेता। हमारे जीवन में हम देखें, कोई हमारे ऊपर फेवर करे तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सदैव हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, कुछ भी हो जाए उसी का ही पक्ष लेंगे। तो लेकिन भागवत ऐसा नहीं है, एक पार्शल है। भागवत बिल्कुल निर्भीक रूप से जो परम सत्य है, जिसको कहते हैं नेकेड ट्रूथ, नग्न सत्य जिसे कहते हैं, वो डरता नहीं है। भागवत किसी को बोलने के लिए है, किसी को थप्पड़ मारने के लिए भागवतम हमेशा क्या करता है, परम सत्य का वर्णन करता है और उसको बिना किसी पक्षपात के सारे जीवों के लाभ हेतु हम बोलता है। इसलिए कभी कभी भागवतम हम पढ़ते हैं तो लगता है कि भागवतम है या क्या है, इतनी कठोर बातें। अभी देखो आजकल ये जो सेक्शन चल रहा है इस पूरे कई सारे श्लोकों में, हाँ एक दो हफ्ते से हम पढ़ी रहे हैं, इतनी कठोर कठोर बातें भागवतम बोल रहा है और उसके ऊपर अधिक कठोर बातें कौन है, श्रील प्रभुपाद, उनके तात्पर्य। हाँ इसलिए ये जो भागवतम है उसकी कठोर वचन है और वो शिक्षाएं हमें प्रदान करता है और वो शिक्षाएं उसके कठोर वचन कैसे काम करते हैं, जैसे कोई शार छुरा हो या फिर कुल्हाड़ी हो किसी चीज को काटने के लिए। इसलिए कहते हैं भागवतम क्या करता है, अपनी शिक्षाओं के द्वारा अपने वचनों के द्वारा हमारे हृदय में जो गांठ लगी हुई है, गठबंधन जानते ना, किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, वो कहते हैं वेडिंग और वेल्डिंग शब्द में क्या अंतर है, सुना है आपने ना, वेडिंग मैरिज और दूसरा है वेल्डिंग, उसमें क्या अंतर है। तो एक भक्त ने कहा इसमें एक ही अंतर है, वेल्डिंग जब करते हैं तो पहले चिंगारियां निकलती है फिर गठबंधन हो जाता है, हाँ, और वेडिंग क्या है, पहले गठबंधन और फिर जीवन भर चिंगारियां। तो ये वैसे ही है, हाँ हमारे हृदय में भी ऐसी गांठ लगी हुई है, इसलिए भागवतम कहता है छिन्नन्ते हृदय ग्रंथि, अटैचमेंट आसक्ति की जो गांठ है वो इधर उधर नहीं लगी, दिखती नहीं है, वो हमने अपने आप स्वयं ही बांध लिया है। कोई ट्रेन मानो जा रही है उसके पीछे अपने आप कमर को बांध दिया और उसका आगे का होगा अपने ट्रेन के पीछे ऐसे लगा लिया, तो ट्रेन क्या करेगी, आपको खींचते हुए ले जाएगी। वैसे ही आसक्ति, आसक्ति हमने अपना हुक अटक के रखा है। हाँ जैसे वो प्रभुपाद उदाहरण देते थे, आजकल मैं एक छोटा सा बुकलेट कंपाइल कर रहा था, प्रभुपाद ने जितनी भी स्टोरियां बोली है 150 के ज्यादा, वो सारी स्टोरियां हम पब्लिश कर रहे थे, अगले महीने शायद वो बुक प्रिंट होगा। तो उसमें एक स्टोरी आती है कि मैरिज पार्टी का स्टोरी आता है जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि रात्रि के समय में पूरी 12 जा रहे थे विवाह करने के लिए और वो सारे बोट में जाकर बैठ गए और बैठ गया और चप्पू चलाया जा रहा था, नाविक चला रहा था। सुबह हो गई, जब बारातियों ने अपनी आंखें खोली तो बोट कहाँ थी, एक ही जगह थी। क्यों एक जगह थी, क्योंकि वो जो क्या कहते लंगर ऐसे वहां लटका के रखा था। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, क्यों परिवर्तन नहीं है, क्यों हृदय कृष्ण के लिए आकृष्ट नहीं हो रहा है, क्यों हृदय में जो स्ट्रॉन्ग गांठ लगी हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं। इसलिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग नॉट है, प्रभुपाद इस तात्पर्य के पहले लाइन में लिखते हैं कि इस संसार में संसार को भोग करने की विशेष रूप से काम इच्छा, ये जो भावना है ये सबसे बड़ी गांठ इस संसार में हर जीव के हृदय में क्या हुई है, लगी हुई है। इसलिए वो कहते हैं पुंसा श्रेया मिथुनी भाव एतर, कि स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म कहाँ है, रजोगुण। काम येषः क्रोध येषः रजोगुण समुद्भवः, कि रजोगुण से ये प्रकट हुआ है, रजोगुण के कारण इसने जन्म लिया है, ऐसा ये जो आकर्षण है वो बहुत जड़ है इस संसार के बंधन की। इस संसार में बंधन का जो मूल है तो ये भौतिक आकर्षण, और ये आकर्षण क्यों है, क्योंकि हर जीव एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करने की जो भावना है उसको आगे रखे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने ऋषभदेव कहते हैं पुंसा श्रिया मिथुनी भाव में तर तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहो, इसी कारण से वो कहते हैं हृदय की गांठ ऐसे बहुत जोर से अटकी हुई है, और ऐसी गांठ से क्या होता है, मिथुनी का मतलब होता है जोड़ा, मिथुन का मतलब जोड़ा, श्री और पुरुष का जोड़ा, जिसके कारण जब वो एकत्र आते हैं तो उससे विस्तार हो जाता है, हर चीज का विस्तार हो जाता है। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनश्य मोहयम अहम ममेति, उससे फिर उसको घर चाहिए, धन चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, और फिर इतना सब एकत्रित करने के बाद उसके अंदर दो प्रकार की भावनाएं जन्म लेती हैं, मैं और मेरा, और इसी कारण से वो जीव इस संसार में गोते लगाता है। प्रभुपाद जब दिल्ली में आए थे अमेरिका से, किसी बहुत धनवान व्यक्ति के घर में गए, वहां उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया था, तो प्रभुपाद अपने विदेशी डिसाइपल्स के साथ गए और वहां बड़ा सा डाइनिंग टेबल था, ऐसे राउंड बना के सब बैठ गए। तो प्रभुपाद जब बैठे थे तो वो जो घर के ओनर हैं, स्वामी थे, जो घर के मालिक थे, वो अपने सब बच्चे पोते पत्नी रिश्तेदार सबको बुला के प्रभुपाद के सामने खड़ा करके कहते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा ये है साला है, ऐसे बहुत सारा कुछ बोल रहे थे। ये सब बोल बोल के प्रभुपाद सुन रहे थे, उनके शिष्य भी सुन रहे थे, ये सब कह के वो अंदर चला गया। अभी केवल कौन बचे, कौन बचे, प्रभुपाद और उनके शिष्य। तो प्रभुपाद बहुत शिक्षाएं देते थे और मस्ती करते थे अपने शिष्यों के साथ। प्रभुपाद कहते देखो इतना कुछ बोल दिया, उसको एक ही लाइन में बोला बोला जा सकता था, क्या कि ये मेरा क्या है, मैथुन जीवन है, ये मेरा विस्तार है। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में हम सब ये जो बंधन है जो सबको बांध के रखता है उसमें क्या है, फंसे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक की सबसे पहली लाइन में लिखते हैं कि ये जो काम की इच्छा है वो अत्यंत प्रबल है, इसलिए रूप गोस्वामी ने उसके लिए एक शब्द यूज किया है, क्या वेग, वेग मीन्स क्या, फोर्स। और इसलिए वो कहते हैं वाचो वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये सारे वेग हैं जो सुनामी की तरह हमारे जीवन में आते हैं और सब कुछ उद्ध्वस्त करके क्या करते हैं, चले जाते हैं। इसलिए जो वेग है, हाँ, ये जो भौतिक भोग के जो वेग है उसको वश में करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अन्यथा वैसे ही संसार में हर एक व्यक्ति कहता है कि मुझ में काम भरा पड़ा है। किसी को भी पूछो प्रभु, लोगों को कहते ना मंदिर आओ, कहते नहीं बहुत काम है। क्या है, बहुत काम है। तो हमको कहते यही तो प्रॉब्लम है, अत्यधिक काम के कारण ही तो स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, काम और उसके दूसरा दूसरा क्या है, नाम। इस वन में दो ही टॉपिक पर सबसे ज्यादा प्रवचन होते हैं, ये क्या है, नाम। हरे कृष्णा, जोर से
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
और दूसरा दूसरा हथौड़ा क्या है, काम, नाम और काम। तो काम से नाम तक जर्नी। तो यहां लोग तो इस संसार में कहते ही हैं, स्वीकार करते हैं कि हम बहुत बहुत सारा काम है। लेकिन दूसरी चीज भी मुझे याद आ रही थी कि इस संसार में ये काम भी क्या है, एक प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है, नशा है। और ये नशा इतना है कि इजीली उतरता नहीं है। हाँ, इसके लिए भागवतम में हर स्कंद में कई सारे स्टोरीज बताई गई है, हर स्कंद में कई सारे श्लोकों के माध्यम से उपदेश दिया है। तो ये जो काम है एक प्रकार का नशा है, जैसे चाय है ना, चाय, चाय को जानते हैं आप, टी। हाँ, तो ये चाय भी एक नशा है। जब तक चाय नहीं पीते तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता सुबह बेड से बाहर उतरते समय, इसलिए बेड टी। आप खोलते किसको देखेगा, पहले चाय का दर्शन, उसको पिएगा। उसी प्रकार से चाय जिस प्रकार से नशा है, उसी प्रकार से ये भी है लस्टी। ये कौन सी टी है, लस्टी, डिजायर्स की एक टी है। तो ये भी एक विशेष प्रकार की नशा है जिसके कारण व्यक्ति नॉर्मल आचरण नहीं करता है। तो हर एक व्यक्ति इसके वशीभूत है। काम रूपी भूत किसी को चढ़ जाता है तो वो सरलता से उतरता नहीं है, और उसके द्वारा बड़ा से बड़ा व्यक्ति घृणित से घृणित कार्य करने के लिए क्या हो जाता है, तत्पर हो जाता है। बड़ा से बड़ा भी सोच रहा था, पहले सोचा सबसे बड़ा देवता इंद्रा, इंद्रा बड़े बड़े ऋषि मुनि हर कैटेगरी में आप ले लो, वो सबसे ऊपर से लेके नीचे तक। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है यस्मिन्द्र गोप मथवेन्द्र, कि एक इंद्र गोप कीड़ा होता है और एक होता है इंद्र राजा, दोनों का नाम इंद्र है। सबसे नीचे सबसे छोटा कीड़ा कृमि जिसका नाम है इंद्र गोप, वो भी उससे प्रभावित है, और जो देवताओं का राजा है हाँ वो भी उससे क्या है, प्रभावित है। तो ऐसे इसके पिछले श्लोकों में वर्णन आया है, जिसके कारण प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत कठोरता से लिखते हैं कि ये जो काम की इच्छा है इस संसार में सबसे अधिक बलवान है, शक्तिशाली है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी वाचम दुहितरम तन्वी, कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री वाक जिसका नाम था उसको जन्म दिया, और जन्म देने के बाद, क्योंकि ऐसे नहीं था कि ब्रह्मा ने जिनको भी जन्म दिया वो छोटे नन्हे से बच्चे थे, सीधा यंग, पालन पोषण का प्रॉब्लम ही नहीं है, स्कूल भेजने का स्ट्रगल नहीं है, फी जमा करो, इसलिए स्वर्ग लोक में जन्म लेते तो ऐसे प्रसूति ग्रह ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया फिर उसको बड़ा करो फिर पढ़ाओ फिर शादी करो, जन्म लेते ही शादी के योग्य होता है, हाँ इतना बड़ा होता है, टेंशन ही नहीं। जैसे शुकदेव गोस्वामी है, कितने साल में प्रकट हुए, सीधा 16 साल के, बाहर आए तो 16 साल के, कोई स्कूलिंग नहीं कुछ नहीं, सीधा आकर भागवतम का लेक्चर देना शुरू कर दिया परीक्षित महाराज को। तो यहां जब उनकी पुत्री ने भी जन्म लिया तो ब्रह्मा का मति दूषित हो गया, वो उसके पीछे दौड़ने लगे, हाँ दौड़ने मीन्स उसका संग करने की कामना उनके हृदय में जागृत हो गई। इसलिए ये जो काम की इच्छा है ये व्यक्ति को अंधा बना देती है। एक बार बीरबल ने कहा, अकबर और बीरबल ना, अकबर ने कहा मुझे बताओ इस संसार में आंखों से देखने वालों की संख्या ज्यादा है या अंधों की संख्या ज्यादा है, आपको क्या लगता है, हाँ किसकी संख्या ज्यादा है, अंधों की। अच्छा तो बुद्धिमान है, मैं तो पहले सोच रहा था कि देखने वालों की, लेकिन जब भागवतम का सेकंड कांड पढ़ा तब पता चला कि सबसे ज्यादा संख्या किसी की है, अंधों की है। तो भागवतम में भी तो लंबा स्टोरी है अकबर बीरबल का, लेकिन फिर बीरबल अकबर को ले गया और फिर दिखाया, देखो इस संसार में अधिकतर लोग क्या है, अंधे हैं। किस चीज के प्रति अंधे हैं, तो वो कहते हैं अंधे हैं इस चीज के लिए, आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह में दिना, आत्मतत्व के प्रति हर एक व्यक्ति अंधा है, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता कि मेरा जीवन मृत्यु के नजदीक है। हमारी स्थिति उस बकरी के समान है, एक बकरी को काट के कसाई ने लटक के रखा है और दो तीन बकरी आपस में इधर उधर की बातें कर रही हैं, क्या बातें कर रही हैं, बहुत सारी बातें कर रही हैं और हरा हरा घास खा रही हैं, लेकिन वो मूर्ख बकरियां वहां नहीं देख रही हैं कि आगे किसको लटकाएंगे, हम तीनों को भी लटकाया जाएगा। तो हम इतना सब कुछ देखते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि हम आत्म तत्व के प्रति अंधे हैं। तो इसलिए ये जो काम है, काम भी व्यक्ति को अंधा करता है। एक डिवोटी कह रहे थे पहले वो मूवीज हुआ करते थे ना लैला और मजनू, तो वहां एक व्यक्ति कहता है, अरे मजनू को कहता है कि आपको क्या इस लैला में इतना सौंदर्य नजर आ रहा है, तो मजनू कहता है कि देखो उसका सौंदर्य आपको देखना है तो किसकी आंखों से देखना होगा, मजनू की आंखों से देखना होगा। इसका मतलब है कि वो पूर्ण रूप में अंधा हो गया है। तो ये जो काम हमें अलग अलग प्रकार से अंधा कर देता है, इसलिए भगवत गीता के तीसरे स्कंद में भी उसका जो अलग अलग परिणाम है उसका वर्णन आया है। तो ऐसे जो श्रीमद् भागवतम है वो हमें सावधान करता है और बताता है कि किस प्रकार से व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि संसार में कुछ भी करने के लिए तत्पर होता है। क्यों आता होता है? क्योंकि उसका ज्ञान काम के द्वारा ढका जाता है। अवृतम ज्ञानमेतेनम ज्ञानिनः नित्य वैरिनः, कि ज्ञानी का नित्य वैरी है जो काम है, जो उसके ज्ञान को ढक देता है। काम ज्ञान, वहां भी भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो काम उसके ज्ञान को ढक देता है, जिसके कारण व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पाता, इतना अंधा हो जाता है। भागवतम में बहुत अमेजिंग घटना आती है उनके बारे में। एक महान राजा है जिनका नाम था ययाति। कम कुछ समय के लिए महाराज ययाति का जो जीवन चरित्र है उसको सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम में इस चीज पर बल देने के लिए शुकदेव गोस्वामी ने कई सारी घटनाओं का वर्णन किया है। पिछली बार हमने सुना था महाराज पुरुरवा के बारे में, कि किस प्रकार से पुरुरवा भी अंधे हो गए थे। किसके लिए? उर्वशी के लिए, जो स्वर्ग की अप्सरा है। तो यहाँ जो ययाति हैं, जिनके बारे में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन आता है, बल्कि ये दो राजाओं का वर्णन भागवतम के 9वें स्कंद में आता है। तो 9वें स्कंद में कहा गया है कि एक महान राजा थे जिनका नाम था नहुष। आगे चलकर ये राजा क्या बने थे? इंद्र बने थे। उन्होंने सोचा मैं इंद्र बना हूं, तो जो पहले इंद्र थे उनकी पत्नी थी सची। उन्होंने तो सोचा कि उनकी पत्नी सची वो मेरी भी पत्नी होनी चाहिए, जिनके कारण उनको सर्प आदि बनना पड़ता है बाद में श्राप के कारण। तो ऐसे नहुष थे जिनके 5 पुत्र हुए थे, 6 पुत्र थे। एक का नाम था यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति। सब में क्या लगा हुआ है? यति। यति मतलब क्या? वैरागी, सन्यासी। जतिपुरा देखा है आपने गोवर्धन परिक्रमा में? यतिपुरा देखा है? नहीं। अरे तो यति परिक्रमा करते हो ना गोवर्धन की, जतिपुरा आता है गांव। वो किसके नाम से ना पड़ा है उस गांव का नाम? माधवेंद्रपुरी के कारण। माधवेंद्रपुरी जब गोपाल का प्राकट्य किया था तो माधवेंद्रपुरी वहां रहते थे, जिसके कारण उस गांव का नाम पड़ा क्या? जतिपुरा या यतिपुरा। यति मीन सन्यासी। इसलिए एक आचार्य थे रामानुजाचार्य, उनका एक नाम था यतिराज। यतिराज मीन सन्यासियों में जो राजा है, किंग है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे इन सबके नाम में यति यति है अधिकतर। इनसे आशा की जाती है कि इनके जीवन में क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए, बल्कि महाप्रभु उसी के लिए आए हैं। तो ऐसे ये जो ययाति जो राजा बने, और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार से उनका जीवन था। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि उस समय एक राजा थे जिनका नाम था वृषपर्वा, और उनकी कन्या थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वो तो अबोध बालिका थी, लेकिन एक चीज उसमें थी, बहुत क्रोधित थी, जैसे कोई सर्पिणी हो, ऐसी वो क्रोध उसके अंदर भरा हुआ था। तो ऐसी राजपुत्री शर्मिष्ठा एक दिन अपने सखियों के साथ, उनके राजगुरु थे वृषपर्वा राजा के शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। तो एक दिन ये जो शर्मिष्ठा, देवयानी और बहुत सारी सखियां मिलकर बगीचे में ऐसे घूमने जाती हैं, अलग अलग स्थान में घूमती हैं, खेलती हैं, फिर एक जलाशय को देखती है जो पानी से भरा हुआ था। तो शर्मिष्ठा कहती है कि हम सब अभी इसमें स्नान करेंगे। तो राजपुत्री है, वो राजकुमारी है, तो सारे सखियों के साथ इवन शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ये सब स्नान कर रही थी, और नग्न स्नान कर रही थी सारी ये कन्याएं। तो जब स्नान कर रही थी, एक दूसरे पर पानी ऐसे उड़े रहे थे, तो उस समय इन सारी स्त्रियों ने या कन्याओं ने देखा कि ऊपर से शिवजी जा रहे हैं। शिवजी और पार्वती इस पर बैठ के जा रहे हैं, नंदी बैल के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। हाँ, शिवजी और पार्वती जा रहे हैं, तो इन सबने तुरंत अपने वस्त्र ढूंढना शुरू कर दिए कि हमें क्या करना है, अपने वस्त्रों से अपना शरीर ढकना है। तो शरीर ढकने के लिए ये वस्त्र ढूंढ रहे थे, तो ये जो देवयानी है शुक्राचार्य की जो पुत्री है उसके जो वस्त्र है वो किसने पहन लिए थे, शर्मिष्ठा ने पहन लिए थे जो राजकुमारी थी। अब ये जब शर्मिष्ठा ने उसके वस्त्र पहन लिए और ये देवयानी ने देखा कि अरे मेरे वस्त्र कहाँ है, उन्होंने सोचा देखा कि ये तो राजकुमारी ने पहन लिए, ये ब्राह्मण की पुत्री शुक्राचार्य की, उसको इतना क्रोध आया, कहते कि देखो इसको, ये तो दासी है, इसको कोई शिष्टाचार नहीं है, मानो कि यज्ञ के लिए रखा हुआ घी कोई कुत्ता ले जाए वैसे इसने क्या कर दे मेरे कपड़े ले लिए हैं। ऐसी इतनी जोर शोर से वो जो देवयानी है वो बोलने लगी। जब स्त्रियों आपस में लड़ाई होती है हाँ तो आपको समझ में आ सकता है कितना नॉलेज होता है उनमें। हम बचपन में हाँ देखते थे या सुनते थे लड़ाई, तो उसमें पता चलता था कि कितने नॉलेजेबल हैं, और ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे एनालॉजीज होती है जो आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही देवयानी इतनी एक्सपर्ट थी, ऐसे ऐसे बोल रही थी वो शर्मिष्ठा को कि देखो हम तो योग्य ब्राह्मण है और भगवान का जो मुख है वो भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं और ब्राह्मणों के तपस्या के कारण ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ बोल रहे थे और उन्होंने कहा युवान हम भृगुवंशी हैं जिनकी पूजा स्वयं लक्ष्मी के पति नारायण करते हैं, और देखो इस स्त्री को, और इसने क्या किया है, मेरे वस्त्र ले लिए हैं। जिस प्रकार से कोई शूद्र है वो वैदिक ज्ञान अपने पास रख लेता है, धारण करता है। तो ऐसे ऐसे कठोर वचन जब बोल रहे थे तब तक ये जो शर्मिष्ठा है राजकुमारी वो वैसे बहुत क्रोधित रहती है, जिसका स्वभाव कैसे था, सर्पिणी की तरह। सर बड़ा ईर्ष्या प्राणी है, उसको कुछ करो ना करो आगे क्या करता है, खाट लेता है। तो जैसे इसने बोला इतने क्रोधपूर्ण वचन, अपमानजनक वचन उन्होंने जब बोले तो शर्मिष्ठा सर्पिणी के भांति जोर जोर से क्रोध में आकर सांस लेने लगी और अपने निचले होठों को उसने क्या किया, चबाते हुए ऐसे चबाते हुए बोले लगी अरे भिखारी, उनको कहा अरे तुम तो भिखारी हो, हमारे दिए हुए जो धन आदि है अन्न आदि है उस पर उधर निर्वाह करता है तुम्हारा जो बाप है शुक्राचार्य, ऐसा ऐसा बोलने लगे। और उन्होंने कहा फालतू की बड़बड़ करते जा रही हो। तो शर्मिष्ठा कोई ये नहीं थी, ये सब बातें आप भागवतम में पढ़ोगे तो आप हंसते रहोगे, हाँ शुक्रदेव को सामने बोल रहे हैं। तो ऐसे जब उन्होंने कहा, शर्मिष्ठा कहती है कि हमारे टुकड़ों पर पल रही हो और वैसे टकटकी लगा के देखती हो हमारे महल की ओर, जैसे कोई कौवा है खाने के लिए एक जगह बैठता है और टकटकी लगा के देखता रहता है। तो ऐसे जब बहुत जोर शोर से लड़ाई हो रहा था देवयानी और शर्मिष्ठा क्या करती है, दूसरे के बाल खींचने लगती है। फिर देवयानी और शर्मिष्ठा जो कपड़े हैं वो खींच रहे थे, ये शर्मिष्ठा राजकुमारी थी उसके उत्पाद बल था, ब्राह्मण वैसे वीक होते हैं शारीरिक रूप से, तो वो देवयानी के कपड़े भी ले लिए उस शर्मिष्ठा ने और उसको कुएं के अंदर डाल दिया। और ये शर्मिष्ठा राजकुमारी अपने सखियों के साथ चल पड़ी और यहाँ अभी कुएं के अंदर कौन लटक रही है, देवयानी शुक्राचार्य की जो पुत्री है, और उसको ढकेल दिया उसने वहां कुएं में ढकेल दिया। तो जब ऐसे हुआ हाँ तो अभी महत्वपूर्ण है, उस समय आगमन होता है किसका, हीरो का। जैसे आप देखते हो ना कोई घटना घटित होती है तो कोई बचाने वाला आना चाहिए, तो वास्तव में सारे जो मूवीज है उन्होंने कहां से चुराया है, भागवतम से, ग्रंथम से ही, लेकिन उसको बड़ा विकृत रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहां जब देवयानी उस कुएं में पड़े थे चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, तो उस समय महाराज ययाति शिकार के लिए निकले थे, शिकार के लिए निकले थे, उनको प्यास लग गई प्यास लगे तो वो ढूंढते ढूंढते चले, हाँ कहा क्या ढूंढ रहे थे, जल, जल ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे हाँ उस कुएं के किनारे, और कुएं के किनारे पहुंचे तो देखा, अरे यहाँ तो जल भी है और एक युवती भी है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो युवती नग्न है, तो उन्होंने क्या किया, दत्वा समुत्तरं वासं तस्मै राजा विवाससे ग्रहित्वा पाणिनां पाणिं वज्वहार दयापरः, उनके अंदर दया आ गई। उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने जो अपना जो ऊपरी वस्त्र चद्दर सा है उसको उस देवयानी के ऊपर डाला, फेंका, और ग्रहित्वा पाणिनां पाणिं, ये शब्द प्रभुपाद ने बहुत बार यूज किया है कि उन्होंने अपने हाथ को उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया, अपना हाथ भी दिया, पहले उत्तरीय दिया फिर बाद में क्या दिया, अपना हाथ दिया और उस देवयानी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो देवयानी जब बाहर आई और वो महाराज ययाति को देख रहा, ययाति पूरे भारतवर्ष के राजा थे, तो ययाति को जब देखा उन्होंने कहा, हे परमवीर शत्रुओं के विजेता, आपने आपका जो हाथ है वो मुझे दिया है और मुझे स्वीकारा है, जिस प्रकार से एक विवाहिता स्त्री को या पत्नी को स्वीकारा जाता है, तो मैं अभी आशा करती हूँ कि आप मुझे कोई और ना छुए। इसका मतलब है आप मुझसे क्या करो, विवाह करो। ये चीज देवयानी उनको कहती है, क्योंकि देवयानी कहती है कि ये वास्तव में भाग्य के द्वारा हमारा मिलन हुआ है और भाग्य के द्वारा ही आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो रहे हो, क्योंकि देवयानी को शाप मिला था। शुक्राचार्य के पास बृहस्पति के पुत्र कच्छ आए थे, उन्होंने बहुत सारे विद्या अर्जन की और वो क्वालिफाइड युवक था, बृहस्पति का पुत्र कच्छ ब्राह्मण युवक, तो ये देवयानी उनसे विवाह करने के लिए मांग कर रहे थे। तो उस कच्छ जो बृहस्पति का पुत्र था उन्होंने कहा, नहीं नहीं आप तो बहुत बड़े ब्राह्मण की कन्या हो, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। हाँ, तो ये जब मना किया तो फिर वो कच्छ ने भी उनको शाप दिया था कि आपका विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, आपका विवाह किसी क्षत्रिय से होगा। जब ययाति मिले तो देवयानी ने ययाति का स्वाभाविक रूप से हाथ पकड़ा और उनको याचना की, और फिर महाराज ययाति वहां से चले जाते हैं। और राजा भी जब देवयानी को देखा, उन्होंने कुएं से बाहर उसके सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हुआ। और वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार का सौंदर्य क्या है, इस संसार का जो सौंदर्य है वो नगण्य है, तुच्छ है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस पृथ्वी का जो सौंदर्य है वो स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनका जो सौंदर्य है उसका मुकाबला किया जाए, उसकी तुलना में इस संसार की जो स्त्रियां हैं मेंढक के समान उनका सौंदर्य है, प्रभुपाद कहते हैं। और उससे भी अधिक सुंदर प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ की स्त्रियां हैं, वैकुंठ की स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि स्वर्ग की स्त्रियों की तुलना में उनके नख का जो सौंदर्य है वैकुंठ की स्त्रियों का उससे भी नगण्य है स्वर्ग की सुंदरियों का। तो उससे भी प्रभुपाद कहते आगे, प्रभुपाद कहते सोचो ऐसी लक्ष्मी सहस्र हजारों हजारों लक्ष्मियां वो सब अपनी आंखें और कंठ ऐसा ऊपर करके एक ही व्यक्ति को देख रही हैं, और वो कौन है, नीलवर्ण नील श्याम श्यामल कोमलांगो, कहते कि ऐसे नील श्याम कृष्ण एक जगह खड़े हैं, उनके राउंड में हजारों हजारों गोपिकाएं लक्ष्मियां खड़ी हैं और उनको देख रही हैं, इतने सुंदर है कि वर्णन आता है कि कृष्ण एक बार आ रहे थे, गोपिकाएं और राधा रानी ऐसी खड़ी थी और देखते जा रहे थे, और राधा रानी का दृष्टि भगवान के मोर पंख के ऊपर गया, उसको वो इतना सुंदर था, कृष्ण आके चले भी गए तब राधा रानी क्या देख रही थी, केवल मोर पंख ही देख रही थी। तो मानो कितना, इसलिए कृष्ण क्या है, सौंदर्य की खान है, भंडार है। इसलिए गोपिकाएं कहती है, कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिला दुई, कि अरे ब्रह्मा मूर्ख तुम्हें सृष्टि करना नहीं आता, कृष्ण को देखने के लिए तो करोड़ों करोड़ों आंखें चाहिए थे, तुमने क्या कर दिया, केवल इस शरीर में दो ही आंखें बना दी, तहाते निमिष कृष्ण की देखी नो मोहि, उसमें भी क्या किया तुमने, फिर पलके बना ली वो डिस्टर्ब करती हैं। हमें भी भागवतम क्लास में क्या डिस्टर्ब करता है, पलके डिस्टर्ब करती है। वहां कृष्ण को देखने के लिए गोपिकाओं को पलके डिस्टर्बेंस महसूस होता है। हाँ, तो इतना अधिक सौंदर्य है भगवान कृष्ण में। और शुकदेव गोस्वामी भगवान के सौंदर्य के श्लोक सुनकर ही उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। तो ऐसे इस भौतिक सुंदरता को देखकर जब ययाति महाराज आकृष्ट हुए हैं, तो वास्तव में वो एक मलमूत्र से बना हुआ जो शरीर है उसके प्रति आकृष्ट हुए थे। इसलिए रुक्मिणी देवी कहती है एक लेटर में कृष्ण को कि कृष्णा मैं इस संसार के दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती। हाँ, भागवत में आप पढ़ोगे दशम स्कंद में, इसलिए भागवत खुश भी हो जाए, फास्टिंग करें, लेकिन क्या करें उस दिन भागवतम पढ़े। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए हमारा कि जिस दिन हम श्रीमद् भागवतम का स्पर्श ना हो, श्रीमद् भागवतम को हमने पढ़ा ना हो, आने का हमारा जीवन निरर्थक है। इसलिए प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि कितने सौभाग्यशाली थे महाराज परीक्षित जिनके पास 7 दिन थे, और हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं हमारे पास 7 मिनट भी नहीं है। इसलिए हमें कुछ चीजें अपने आध्यात्मिक जीवन में फिक्स कर देनी चाहिए, जिसके अंदर लक्ष्मण रेखा या पत्थर की लकीर कुछ भी हो जाए, हाँ भागवतम मुझे पढ़ना ही है, भागवतम मुझे सुनना ही है। तो ऐसे ये जब महाराज ययाति उनसे आकृष्ट हो गए और वापस आए, तो ये देवयानी अपने पिता के पास गई, शुक्राचार्य के पास, और गई और जो भी घटना घटित हो गई थी शुरुआत से लेकर कुएं में गिरने तक उसके बाद भी सबको जाके पिता को सुना दिया। शुक्राचार्य ब्रह्म तेज तेजवान थे ब्राह्मण, वो भी इतने कुपित हो गए, वो निंदा करने लगे, धिक्कारने लगे, ऐसा पौरोहित्य मतलब राजा के पुरोहित थे, कहते धिक्कार है ऐसा पुरोहित बनना, इससे अच्छा है कि जो खेतों में किसान धान इकट्ठा करते हैं और जो गिर जाता है उसको इकट्ठा करके उपजीविका करना श्रेयस्कर है। वो कहते कि कहां मैं ये सब चक्कर में पड़ा हूं, राजा का गुलाम बना हूं। कहते कि नहीं, अभी मुझे राजा के पास जाना ही होगा। वो घर छोड़ दिया, अपने पुत्री का हाथ पकड़ा, राजा वृषपर्वा के महल की ओर चलने लगे तेजी से। अभी महाराज वृषपर्वा उनकी जो पुत्री थी, क्या नाम था उसका, शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ने जो किया था वो राजा को पता चला था। राजा ने सोचा अभी शुक्राचार्य आएंगे, मुझे शाप देकर सब कुछ उध्वस्त कर सकते हैं। राजा महल छोड़ के दौड़ते हुए आधे रास्ते में जाकर शुक्राचार्य के चरणों में गिरा। उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, अपनी पुत्री के बदले में आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो पूरा दंडवत किया, हाथ जोड़ के खड़े रहे, शुक्राचार्य शांत हो गए। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी जो पुत्री कहे वही तुम करोगे तो मैं क्षमा कर सकता हूं। तो देवयानी को खुन्नस थी, किससे, शर्मिष्ठा से। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, हाँ किसी से यदि ईर्ष्या हो जाती है, बदले की भावना, बदले की आग, इसलिए डिवोटीज को ये बदले की भावना हृदय में नहीं रखनी है। इस संसार में घटनाएं होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक ही चीज के लिए फिक्स होना चाहिए, और वो क्या है, भगवत भक्ति। हाँ, मेरे हाथ से भगवत भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे जब कहा गया तो देवयानी ये तैयार हो गए। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी जो पुत्री है उसका विवाह किससे होगा, ययाति से, महाराज ययाति से। जब इसका विवाह होगा तो आपकी ये जो कन्या शर्मिष्ठा है ये उनके साथ और सारी सखियों के साथ दासी के रूप में जाएगी। हाँ, तो जो विवाह हो गया तो वास्तव में जो राजकुमारी थी अभी वो किसकी दासी बन गई थी, देवयानी की। इतना बड़ा बदला। हाँ, तो देवयानी की दासी बन के वो चली गई। और फिर ये शुक्राचार्य बड़े एक्सपर्ट थे, दक्ष थे, वो गुरु थे ना, देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति, और आसुरों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य, शुक्र के आचार्य, मतलब कुल की जो परंपरा है। तो ऐसे जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने जब इनका विवाह हुआ और विवाह के समय महाराज ययाति को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? कि आप कभी भी शर्मिष्ठा का संग नहीं करोगे। हाँ, ये चेतावनी दी थी। लेकिन जब उनका विवाह हुआ, देवयानी को दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था यदु। यदु महान राजा बने, जिनके वंश में कौन प्रकट हुए? भगवान कृष्ण, यदु वंश। हाँ, तो देवयानी के जो यदु पुत्र थे, और दूसरे थे दुर्वसु। और फिर एक बार यदु जो पुत्र था, ये शर्मिष्ठा ने उसको देखा तो इतना लगा कि अरे इतना सुंदर बालक, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। तो इसने ययाति को अप्रोच किया, जिनके द्वारा शर्मिष्ठा को भी तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई। बल्कि ययाति भूल गए, क्या भूल गए? चेतावनी भूल गए। किसने दी थी चेतावनी? शुक्राचार्य ने। वो चेतावनी भी भूल गए। अवृतम याद रहते ना, पता है, लेकिन फिर भी हम वही करने जाते, अपनी भौतिक इच्छा को तृप्ति करने के। हमें पता है अधिक स्वीट राइस खाऊंगा या दूध पीऊंगा तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन कंट्रोल नहीं है टंग में, फिर भी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस संसार में दो चीजों को व्यक्ति सबसे अधिक सामने रखता है, प्रायोरिटी देता है। उपस्थ जिह्वा बहुमन्यमानः, एक है अपनी भोग करने की इंद्रिया और दूसरा है अपनी जिह्वा, जिनको वश में नहीं कर पाता व्यक्ति, जिनके कारण वो सब उसका ज्ञान आदि सब हरण हो जाता है, सारे श्लोका बोल जाता है, सारी प्रार्थनाएं याद नहीं आती। अजामिल के बारे में देखो, कितने बचपन से रोज श्लोका याद करता था, लेकिन उन्होंने देखा जंगल में कोई शूद्र और शूद्रानी आपस में आलिंगन कर रहे हैं, वो देखकर अजामिल श्लोका याद करने का प्रयास नहीं कर रहा था, एक भी श्लोक याद नहीं आ रहा था, वो भूल गया। और उससे प्रभावित होकर अपने ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया। तो वैसे ही यहां ययाति तो भूल गए, और फिर जब देवयानी को पता चला तो देवयानी भाग गया अपने घर के। शुक्राचार्य पिता को कहा, पिताश्री देखो, मेरा जो पति है वह शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न कर रहा है। तो शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए। देवयानी जब मायके गई, उनके पीछे के ययाति महाराज भाग के चले गए। जब गए और फिर शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो बहुत झूठा है। हाँ, वो कहते हैं, शुक्र स्तमाह कुपितः श्री कामानत पुरुषः त्वं जरा विषता मंदः विरूप करणी नृणाम। वो कहते हैं कि अरे झूठे व्यक्ति, तुम्हारे अंदर इतना अधिक काम भरा पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम क्या हो जाए, त्वं जरा विषता मंदः, तुम्हें बुढ़ापा आ जाए और तुम विरूप हो जाओ, कुरूपादि हो जाओ, आशक्त हो जाओ। हाँ, तो ये जब सुना तो ययाति महाराज खत्म ही हो गए। उन्होंने सोचा, ये क्या हो गया, मेरे जीवन का एक ही तो लक्ष्य था, इंद्रियों को क्या करना, दर्पण करना। इसलिए इस संसार में हर जीव स्पर्धा में लगा हुआ है, एक ही होड़ लगी हुई है, इंद्रियों को तृप्त करने की होड़, आँख कान नाक जीवा स्पर्श इंद्रिया, उसको हम तृप्त करना चाहते हैं। एक पुराण में वर्णन आता है जिसमें कहा गया है कि ये जो प्राणी है, पशु है, वो एक इंद्रिय के द्वारा उनका जीवन खत्म हो जाता है। जैसे हिरण है, हिरण मधुर गीत सुनती है बहेलिया का, और जिसके द्वारा शिकार बन जाती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है एक ही इंद्रिय के द्वारा। और जो जीवा के द्वारा मछली, तो उन प्राणियों का एक इंद्रिय इतना प्रबल होता है जिसके द्वारा उनकी जान ले जाती है, लेकिन मनुष्य की पांचों इंद्रिय बहुत प्रबल है, उसके साथ क्या होगा? कहते पुराण कहती कि उसकी क्या हालत होगी, वो तो एक ही इंद्रिय उनका पावरफुल रहता है। लेकिन यह ह्यूमन बींग्स में पांचों इंद्रिया प्रबल है, जिनको सह पाना अत्यंत कठिन है। और ये जब सुना कि मुझे वृद्ध बनने का शाप मिला है, अशक्त हो जाऊंगा, निकम्मा हो जाऊंगा, अपनी जो देवयानी के साथ संग नहीं कर पाऊंगा, तो उससे वो पागल हो गए। कौन? ययाति। भागवत होकर उन्होंने कहा शुक्राचार्य के चरणों में गिरे। वो कहते कि अभी तक मैं तृप्त नहीं हुई भौतिक संसार के भोग से, आपने आपकी जो पुत्री है उनके साथ में संग आदि करना चाहता हूं, आप दया करो मुझे इस शाप से मुक्त करो। तो शुक्राचार्य को दया है, बेचारा इतना चरणों में गिरा हुआ है। तो उन्होंने कहा तुम क्या करो, अपना बुढ़ापा किसी और को दो, एक्सचेंज ऑफर, पुरानी कार दो, मारुति की पुरानी कार देते ना, फिर आप नई कार से लेते हो, एक्सचेंज ऑफर रखा। ये कहां से सीखा इन लोगों ने, शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य ने कहा कोई ढूंढो आप, उसको अपना बुढ़ापा दे दो, उसका जवान खट्टा कट्टा शरीर ले लो, तब तुम फिर से दक्ष हो जाओगे हाँ इस भोग करने के लिए। तो फिर अब इसने सोचा चैरिटी कहाँ से शुरू करो, अपने घर से ही, इधर उधर कहाँ ढूंढो। तो उनके पांच पुत्र थे, कितने पुत्र, हट्टे कट्टे कम जवान हाँ। तो उनके पास गए, सबसे पहले वो यदु के पास जाते हैं, वो कहते हैं यदो ताता प्रति क्षेमा जराम देहि निजम मया, कि यदो ताता हे मेरे प्रिय पुत्र यदु, जब किसी से कुछ काम निकलना होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातों का इस्तेमाल करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, मधुर मधुर भाषा इस्तेमाल करते हैं, और काम हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे सीना तान के खड़े हो जाते हैं। अभी ययाति सोचो कितना घृणित, कितना निर्लज्जता पूर्ण कार्य है कि अपने पुत्र के पास जाकर कि मुझे फिर से इस संसार का भोग करना है, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और मुझे आपकी जवानी दे दो, युवा अवस्था दे दो, ऐसा हुआ है हिस्ट्री में नहीं। तो ऐसे ययाति उन अपने पुत्र के चरणों में गिर रहे हैं, उनको कहते हैं मेरे पुत्र आप अपना ना जरा दे ही निजम हो, ये मेरा जरा ले लो, बुढ़ापा ले लो, आज तो कोई अपना फोन देने के लिए तैयार नहीं होता, गाड़ी मांगो तो बहुत दूर है, और कुछ मांगो तो मुश्किल ही है, यहाँ क्या मांगा जा रहा है सीधा आयु, अब जवानी मांगी जा रही है, बुढ़ापा कितना कष्टप्रद है, इसलिए हम हर समय जवान रहना चाहते हैं, इसलिए तो बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता, क्योंकि युवा अवस्था का जो सुख है या आनंद है वो कुछ और है। इस प्रकार से जब उन्होंने उनसे मांगा तो वो जो यदु है वो कहते हैं कि अब वो इसी भाषा बोलते हैं, याद कहते हैं कि हे पुत्र मैं इस संसार को भोग करके अभी तृप्त नहीं हुआ हूं, और मुझे अब अपना युवा अवस्था दो ताकि और कई साल कई वर्ष मैं इस संसार का भोग कर सकता हूं। हाँ तो व्यक्ति ने ज्ञान को खो दिया है, निर्लज्ज हो गए थे ययाति, मोहग्रस्त हो गए थे हाँ, विकर्म करने के लिए तैयार है। अरे यदि प्रहलाद महाराज की भाषा में बोला जाए तो कहते पुनः पुनः चरवित चरवनाना, फिर से चबाने के लिए वो तत्पर है। तो ऐसे जब अपने पुत्र के चरण में गिरे थे तो यदु बहुत बुद्धिमान थे, कहते हैं आप तो तरुण पहले भी थे, अभी बूढ़े हो गए हो, मुझे आपका बुढ़ापा मान्य नहीं है, आपकी जर्जर अवस्था पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक सुख को उपभोग नहीं करेगा तब तक वो विरक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना युवा अवस्था आपको नहीं दूंगा। ऐसे था ना वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू थे, नारद मुनि ने कहा अच्छा इतने सारे पाप करते हो किसके लिए, पुत्र पत्नी आदि के लिए, जाओ घर में जाके पूछो जितने पाप उनका पालन पोषण करने के लिए कर रहे हो वो पाप के भागीदार बनेंगे या नहीं। तो ये गए रत्नाकर डाकू, वहां गए और जाकर पूछा पत्नी को, उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, पत्नी ने कहा पाप में मैं भागीदार नहीं हूं, आप मुझे शादी करके घर लाए हो, आपका जिम्मेदारी है, गाय को खरीद के लाते हो तो उसको क्या देना पड़ेगा, घास, बच्चों में भी दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, वो बेचारा फिर कहां आ गया, नारद जी के पास। तो वैसे ही यहाँ पे यदु ने भी देने से मना कर दिया, और फिर उन्होंने सोचा बाकी मेरे दूसरे पुत्र हैं दुर्वसु, द्रुयु, और हम उनके पास जाते हैं, वो भी मना करते हैं, हम अपना युवा अवस्था नहीं देंगे। फिर उनको याद आ गई उनके सबसे अच्छे पुत्र, उनका नाम था यदु, था यदु नहीं पुरु था। तो ऐसे ययाति पुरु के पास जाते हैं और पुरु के पास जाकर जो सबसे छोटे थे उनको कहते, तुम अपने बड़े भाइयों के तरह अवज्ञाकारी मत बनो, आज्ञा का पालन करना सीखो। तो पुरु बड़े बुद्धिमानियों की बात करते हैं। पुरु कहते हैं कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पिता का ऋण चुका सकता है, क्योंकि पिता का एक पुत्र के प्रति इतना अधिक ऋण होता है कि पुत्र उसे कभी भी चुका नहीं सकता, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता के द्वारा ही एक पुत्र को मनुष्य का शरीर मिलता है, और ये मनुष्य का शरीर इतना श्रेष्ठ है कि जिसके द्वारा वो भगवान का पार्षद बन सकता है, भगवान का निजी संगी बन सकता है। ऐसी बातें वो करते हैं और वो कहते हैं कि जो उत्तम व्यक्ति है, उत्तम व्यक्ति कौन है जो पिता की इच्छा को जान के कार्य करता है। हमें जो शिष्यों की बात करते हैं, तीन प्रकार के शिष्य, वो यहाँ से ही लिया गया है। तो यहाँ यदु कहते हैं कि पिता की इच्छा को जानते जो कार्य करता है वो उत्तम प्रकार का पुत्र है, और आज्ञा पाकर जो कार्य करता है वो मध्यम प्रकार का है, और जो आज्ञा पालन अनादर पूर्वक करता है वो निम्न श्रेणी का है। तो इस प्रकार से जब उनसे बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपका जो आज्ञा है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना मल के सदृश है। तो जो यदु है, यदु नहीं पुरु है, वो तैयार हो जाते हैं और पुरु से क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं अपना बुढ़ापा। अभी उनका पुत्र क्या बना था, बूढ़ा हो गया था, और अभी महाराज ययाति क्या बने, फिर से जवान बने। और भागवत में कहा गया है कि फिर उन्होंने कुछ हजार वर्ष सहस्राणी एवं वर्ष सहस्राणी मनस्तेर मनसुख विदधानोपि नाप्रप्य सार्वभौम चरित्रिया। कहते हैं कि फिर से हजारों वर्ष तक उन्होंने भोग किया फिर भी वह तृप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रिया कैसे थे, शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कदिंद्रिया, कदिंद्रिया मतलब अशुद्ध इंद्रिया थी। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो क्या करना होगा, ऋषि केना ऋषि केशः सेवनम भक्ति रुचते। इन इंद्रियों के माध्यम से जो भगवान कृष्ण है इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसे जब उनसे एक्सचेंज किया और बहुत सालों तक उपभोग किया फिर भी वो तृप्त नहीं हुए, तो महाराज ययाति के हृदय में क्या आ गया, वैराग्य आ गया। और फिर उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, क्या नाम था उनकी पत्नी का, देवयानी। शर्मिष्ठा को भूल जाइए, किसको याद रखिए, देवयानी। तो देवयानी का हाथ पकड़ा और बैठो, कहा मेरे साथ बैठो, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा। तो अपने पत्नी को पास बिठाया और महाराज ययाति ने कथा सुनाई, पूरा एक अध्याय है, 90 अध्याय का, 90 स्कंद का 19वां अध्याय। तो उसका थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, जल्दी समय तो हो गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि हे मेरी प्रिय भार्या शुक्राचार्य की पुत्री, आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर हर एक व्यक्ति परम शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं, वो फिर बोलने लगे, वो कहते कि देखो एक बकरा था, क्या था, एक बकरा था, और वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चलते चलते जंगल में घूमते घूमते जा रहा था, तो अचानक उसको एक बकरी दिखाई दी, कहा जो कुएं में गिरी हुई थी, निशाय अवस्था में थी। तो ऐसे जब उस बकरी को देखा तो ये जो बकरा है योजना बनाने लगा उस बकरी को बाहर निकलने के लिए। तो फिर ययाति महाराज कहते हैं, फिर इस बकरे ने योजना बनाई कैसे उसको बाहर निकालो, तो अपने जो सिंह थे उससे जमीन को मिट्टी खोदने लगा जिसके द्वारा जगह हो जाए और वो जो बकरी है वो बाहर निकल सके। हम वास्तव में किसके बारे में बोल रहा है? अपने बारे में बोल रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि जब सुंदर पट्टों वाली वो बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा और उसने सोचा कि मैं पति बनाऊंगी तो इसी बकरे को बनाऊंगी। बड़ा भागवतम हाँ बहुत शिक्षाप्रद है। तो बहुत सारा वर्णन वो करते हैं, मैं जस्ट स्किप करता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि जब उस बकरे को देखा, उसकी दाढ़ी मूछे आदि इतना सुंदर लग रहा था, फिर वो एक नहीं, वो कहते कि और बकरियां उससे आकर्षित हो गए। शर्मिस्ता आदि का वर्णन वो बोल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा बकरा जो एक ग्रह ने उसको पकड़ लिया था। आजकल ग्रह होते हैं ना, शनि ग्रह, शनि ग्रह तो सबको पता है। वो कहते हैं यहाँ है काम ग्रह, कौन सा ग्रह? और वहां भागवतम के सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नरसिम्हदेव मुझे भी एक ग्रह ने पकड़ लिया है। वो ग्रह कौन सा है? कृष्ण ग्रह। वहां कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको पकड़ा है, यहाँ ययाति को काम रूपी ग्रह ने पकड़ा है। और वो कहते हैं ययाति कि वो जो बकरा जब काम रूपी ग्रह ने उसको पकड़ा था तो बकरा अपने जीवन का सबसे मूल्यवान कार्य करना भूल गया, वो था आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। तो फिर वो बोलते जा रहे हैं, वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हैं कि फिर वो कहते हैं कि वो जो बकरा था वो केवल एक ही बकरे से संतुष्ट नहीं था, और बकरियों के साथ संबंध स्थापित कर रहा था, जिसके कारण वो बकरे फिर अपने पिता के पास गए और वो गए और फिर उसके द्वारा वो जो पिता थे पहले उसके जो स्वामी हैं उसने बकरे को दंडित कर दिया, दंडित किया। तो फिर बकरा उसके चरणों में गिरता है और फिर दंडित क्या किया था, उसके अंडकोश काट दिए थे और वो कहते कि फिर से उसे जोड़ देते हैं। तो ये सब स्टोरीज बहुत लंबी हैं जिसको वो सुनाते हैं। बहुत प्रभुपाद के तात्पर्य भी बहुत अमेजिंग है, इस पर आप फ्यूचर में पढ़ सकते कभी। तो ऐसे जब बोल रहे थे तो फिर अपने पत्नी का हाथ हाथ में रखते हुए ययाति महाराज कहते हैं कि है देवयानी यत् पृथ्वीयां व्रीय एवं हिरण्य पशवः स्त्रिया न दुर्यन्ति मना प्रीति मुंसा काम हतश्यते। कि संसार में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिनके हृदय कभी तृप्त नहीं होता है भौतिक भोग से, उनको इस संसार का सारा धन दे दो, सारा अनाज दे दो, सारा पशु दे दो, सारा सोना दे दो, सारी स्त्रियां दो या सारे पुरुष दो, तभी कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर वो फेमस श्लोक बोलते हैं, न जातु काम कामानां उपभोगेन शाम्यति हवेशा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। उन्होंने कहा ये तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अग्नि में घी डालना, घी जितना डालोगे उतना ही अग्नि क्या होगी, वर्धित होगी। फिर संसार में जितना अधिक इस जगत को भोगने का व्यक्ति प्रयास करता है उतना ही अधिक इस संसार में वो बनते जाता है। इसलिए ययाति महाराज से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, और अंधा होकर वो फिर इस संसार से बाहर निकलना उसके लिए बहुत अधिक मुश्किल होता है। इसलिए प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं, वास्तव में इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति का सुख वैसा ही है जैसे ऊंट क्या करता है, कांटीली झाड़ियां खाता है और वो कहता है ये झाड़ियां कितनी मीठी हैं, बल्कि वो कांटे खाने से उसकी जीवा से ब्लड आता है और ब्लड ही स्वादिष्ट लगता है उसे। तो उसी प्रकार से आजकल के लोग भी सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है वो सर्वोच्च है, लेकिन वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में नियुक्त होता है तो इस सुख को कैसे देखेगा, वो तुच्छ की तरह देखेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं यद मैथुनादि ग्रह मेदिन सुखम ही तुच्छम, कि ये जो सुख है ये वैसे ही है जैसे कोई खुजली हो जाती है, उसको खुजलाने से वो कम नहीं होगी, क्या बढ़ेगी और बढ़ेगी और बड़ा सा घाव होगा, अब उसके द्वारा व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख एनयते अत्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस स्पर्श सुख में कभी रममान नहीं होता, उसमें कभी लगता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति को 300 साल लगेंगे, एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति को 300 साल लगेंगे ये समझने के लिए भौतिक भोग में कोई सुख नहीं है। हमें तो कई चंद लग गए, जा भी रहे हमारे कई सारे हजारों हजारों जन्म, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, और माया हमें आश्वासन देती रहती है कि बेटा एक दिन पूर्ण रूपे में सुखी हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, लेकिन माया का ये कार्य ही है। इसलिए माया दो प्रकार से एक्टिव है, एक है अवर्णात्मिका शक्ति, मतलब अवर्णात्मिका शक्ति का मतलब है व्यक्ति कितना भी घृणित अवस्था में है वो सोचता है मैं सुखी हूं, क्योंकि ढका हुआ है उसको, आवरण आवरण कर दिया है। जैसे मिस्टर इंद्र थे, उनको शाप मिला क्या बनने के लिए, सुअर, सुअर बनने के लिए शाप मिला, तो सुअर बने भी और पूरा सुंदर पत्नी, पूरा बच्चों की ऐसी क्रिकेट टीम थी, पूरे इतने सारे वो सुअर के बच्चे थे उनके, और मुखिया थे उस गांव के। ब्रह्मा ने सोचा अरे इंद्र पद खाली है, बोला के लाता हूँ, पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी गए पूरा अपना हंस लेकर गए, जाते और उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते, और अभी तो इंद्र तो सुअर बने हुए ऐसे देख रहे अपना मुंह ऊपर करके, और वो कहते इंद्रा चलो चलो वापस, वहां सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, वहां रंभा है, उर्वशी है, मेनका है, अरुंधति, बहुत सारे स्त्रियों के नाम लिए। तो वो कहते अच्छा ये मिस पिग है ना, इससे आगे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, कैसे मैं आऊं, मेरे इतने बच्चों की टीम है। तो कहते कि ये मानेगा नहीं, क्योंकि जब माया शक्ति अवर्णात्मिका, मतलब जो कंडीशन है अभी हमें भी वैसे ही लगता है, हमें जिस स्थिति में जिस बोर्ड में होना वो सही है, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे, तो वैसे ही ब्रह्मा ने क्या किया, फिर उसको मार डाला, जैसे इसको मारे बिना आ नहीं सकता, उसको मार के वो ले गए। और वैसी स्थिति नारद की थी, नारद ने सोचा इतना मैं घूम घूम के प्रचार करता हूँ, माया का इतना वर्णन करता हूँ, माया से निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर, कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली माया है क्या। कृष्ण को कहते कृष्णा, एक बार वो गुजरात के रेगिस्तान से जा रहे थे, कृष्ण को कहते हैं कृष्णा आप तो द्वारका के निवासी हो, भगवान ने कहा पकड़ा था नारद का, नारद को कहते हैं कि नारद बताओ क्या सोच रहे हो, बहुत सोचते हुए जा रहे हो। नारद कहते मुझे ना आपकी माया को देखना है, एक बार माया का दर्शन करना है। हाँ तो एग्जैक्टली माया क्या है, भगवान कहते देखो रेगिस्तान में चल रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, जब एक गिलास क्या लाओ पानी भर के लाओ ठंडा कूद। तो नारद कहते अब भी ले आता हूं आपके लिए, क्या सेवा बताएं, बड़े भक्तों को बड़ी बड़ी सेवा होनी चाहिए, एक गिलास पानी लाने के लिए भेज दिया मुझे। नारद गए जाते, थोड़ा सा चल के जाते, कृष्ण इंतजार कर रहे थे, चल के जाते तो एक छोटा सा गांव नजर आता है रेगिस्तान में, हरा भरा गांव, वो भी किसमें रेगिस्तान में। वहां घुसे तो एक दरवाजा खटखटाया, अरे बोल कोई है अंदर, कोई आया नहीं, लेकिन दूसरी बार खटखटाया तो एक सुंदर युवती ने दरवाजा खोला, नारद जी हमारा तो सौभाग्य है आपके चरण हमारे घर में पड़े हैं, आइए 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 बैठिए। नारद ने कहा अब आए कि बैठ गए नारद, और नारद जैसे बैठे तो फिर उनका पिताश्री आ गए उस युवती के अंदर मुखिया थे गांव के, पिताश्री भी आए, देखा नारद आज हमारे घर में, हमारा तो अहो भाग्य है। तो फिर नारद का स्वागत सत्कार हुआ, पूरा भोजन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर नारद वो पिता ने कहा कि हमारी ये कन्या है, रूपवती है, सौंदर्यवती है, इससे क्या करो, विवाह करो। नारद तुरंत एक हाथ एक पाँव में खड़े हो गए विवाह करने के लिए। नारद ने तुरंत विवाह आदि किया। अभी वो जो मुखिया थे उनका तो देहांत हो गया, अगले उस गांव के मुखिया कौन बने? नारद जी। नारद जी मुखिया बने, सुंदर पत्नी, इतने सारे चिल्ड्रंस और इतना धन, सब कुछ था। फिर बाढ़ आ गई जोर से। कहां बाढ़ आ गई? रेगिस्तान में, भूलिए थे। बाढ़ आई तो बाढ़ में तो सब बहने लगा, घर भी बह रहा था, बच्चे भी बह रहे थे, पत्नी भी बह रही थी। तो नारद अभी बचाने का प्रयास कर रहे थे। नारद कभी बच्चों को पकड़ रहे थे, तो कभी पत्नी को पकड़ रहे थे, तो कुछ मोबाइल हाथ से छूट रहा होगा, उसको भी पकड़ रहे थे। तो ऐसे पकड़ते पकड़ते सब छूट गए। हमारे साथ भी एक दिन क्या होने वाला है, सब हम कितना भी पकड़ने का प्रयास करो इस भौतिक संसार में, सबको इकट्ठा करने का, हाँ सब छूटने वाले हैं। तो सबको सब छूट गए। फिर नारद का सर पानी में ऐसे उल्टा हो गया, पांव ऊपर, और ऐसे ऐसे कुछ करते करते जब सर नीचे गया और हाथ ऐसा किसी को पकड़ने के लिए ठाया कर रहे थे, तो धोती हाथ में आ गई, कुछ कपड़ा हाथ में आ गया, ऐसे ऐसे पकड़ के ऊपर देखा, कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं नारद पानी कहाँ, एक गिलास। नारद अच्छा मैं पानी कहाँ गया था, तो कहते अब भी जाता हूं। नारद फिर से जाते, फिर से गांव दिखाई देता है। अभी कहते अभी नहीं करते, नहीं करूंगा। अभी गए और फिर नॉक किया, नॉक करते ही दरवाजा खोला और नारद, नारद जी अहो भाग्य, हमारा तो भाग्य उदित हो गया है, आइए आइए अंदर आए। फिर से युवती हो, नारद कहते मुझे एक ग्लास पानी चाहिए। तो माया का मतलब क्या है? कृष्ण की सेवा भूलना, मीन्स क्या माया है। तो कोई भी चीज हमारे लिए माया हो सकती है, कोई भी चीज, हमारा मोबाइल्स हैं इसलिए कोई भी चीज हमारे लिए माया हो सकती है। तो नारद के ऊपर वो अवरण, अवरणात्मिका शक्ति, कृष्ण की सेवा को भूलना मीन्स माया। या जो भी चीज, जो भी व्यक्ति, वस्तु, जो भी कार्य जो हमें कृष्ण की सेवा को भुला देता है, वो चीज, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो वस्तु, वो एनवायरमेंट हमारे लिए क्या है? माया है। और दूसरी भगवान की शक्ति क्या है? प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रक्षेपात्मिका शक्ति का मतलब है कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो फिर ये शक्ति एक्टिव हो जाती है, उसके एजेंट काम करने लगते हैं। मंदिर जाता है, कब से जा रहा है, टीका लगा के कहा घूमता है, हाँ ये क्या हो गया, हाथ में, पहले तो अच्छे थे, लंबे सुंदर घने बाल थे, हाँ अभी तो पूरा मशीन चला, जीरो कौन सा मशीन, हाँ ट्रिमर जो भी है। तो ऐसे ऐसे माया के एजेंट बताते रहते हमारे पीछे लगते हाथ धोकर। हाँ प्रभुपाद उसके लिए स्टोरी बता रहे कि एक व्यक्ति प्रभुपाद कहते एक व्यक्ति गया, वो अपने यहाँ बकरे का बच्चा, पता नहीं आपने सुना होगा, नोइंग स्टोरी है, उसको ऐसे कंधे में लेके आ रहा था। पांच छह लोग खड़े थे और उनको बकरी खाने की इच्छा हो रही थी, तो व्यक्ति आया बकरे को लेके जा रहा था अपने घर। वो कहता अरे गधे के बच्चे को ले जा रहा, पहले भी बोला उसको डाउट आ गया, अरे मैं बकरे के बच्चे को ले जा रहा हूँ, गधे के बच्चे को ले जा रहे। फिर आगे दो तीन और खड़े थे, वो सारे एक दूसरे के मित्र थे। वो थोड़ा आगे गया, दूसरे ने भी वही बोल दिया, हाँ आप कहाँ जा रहे हो, आपको एक गधे के बच्चे को सर के ऊपर उठा के रखा है। तो ऐसे सबने बोल बोल के उसको लगा कि मैंने किसको उठाया है, उसको फेंक दिया। वैसे ही माया के एजेंट भी जब हम भक्ति में लगते हैं, वो भी ऐसे हमारे पीछे हाथ धो के लगते हैं। हाँ, वो मंदिर जाते समय, सेवा करते समय, जब बहुत सारी चीजें, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र हैं, भक्त भी होते हैं कुछ हमारे, हाँ, जो माया के एजेंट किसके वेश में आते हैं, भक्तों के वेश में भी आते हैं। प्रभु जी इतना सीरियस मत होना। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति है प्रक्षपात्मिका शक्ति। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति का बिजनेस है ना, वो दिल्ली का लड्डू नाम देते प्रभुपाद। दिल्ली का लड्डू जिसने खाया वो पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया, प्रभुपाद कहा करते थे। तो इसलिए माया कोई हमारी दुश्मन नहीं है, माया कृष्ण की सेविका है। बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जब गोप कुमार वैकुंठा जा रहे थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो ये माया देवी आई और कहा आप मेरा उपभोग करो। तो गोप कुमार उनको हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके भाई की सेवा करना चाहता हूं। माया देवी के भाई कौन है? योग माया के भाई कृष्ण है। ऐसी प्रार्थना करते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से अप्रोच करते हैं। तो कैसे हम माया को भगा सकते, इस भावना को कैसे हमारे हृदय से भगा सकते हैं, उसके लिए एक ही उपाय है, गोपीनाथ और तो उपाय ना है। गोपीनाथ की भक्ति के बिना और कोई उपाय, हाँ, क्योंकि कभी भी दो स्त्रियां एक साथ नहीं रह सकती, रहती क्या? सोचो कोई एक व्यक्ति, उनकी दो पत्नियां हैं, कितना लड़ाई झगड़ा रहता है। तो दो स्त्रियां, एक माया देवी और दूसरा भक्ति देवी। भक्ति देवी आएगी आपके हृदय में तो दूसरी देवी भाग जाएगी, माया देवी भाग जाएगी। इसलिए किसको लाना है हमारे हृदय में? भक्ति देवी को लाना है। हाँ, तो ये भक्ति देवी को लाने के लिए प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है, पहले सत्व गुण में आना चाहिए। कौन से गुण में? सत्व गुण में। तो सत्व गुण में आने के लिए पांच चीजें हमें करनी चाहिए। तो फिर क्योंकि ये जो काम है, काम का मतलब डिजायर्स, भौतिक भोग की इच्छाएं, वो इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे ध्रुव महाराज को इच्छा थी बड़ा राज्य चाहिए, तो ऐसी कोई भी इच्छाएं जिसको काम, काम ये शब्द बड़ा वास्ट है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये जो काम की जो भावना है ये रजोगुण से उत्पन्न है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, कि ये तृष्णा हमेशा बनी रहती है भोग की। तो सबसे पहले हमें सत्व गुण में आना चाहिए। और पहली चीज क्या करनी चाहिए सत्व गुण में आने के लिए? हमें एक मूड कल्टीवेट करना चाहिए ड्यूटी कॉन्शियसनेस का। ड्यूटी को क्या? कर्तव्य की भावना लानी होगी। हाँ, जब करना मेरा परम कर्तव्य है, सेवा करना, अध्ययन करना, ये सब कर्तव्य का भाव लाना है इन सब में, एज ए ड्यूटी, कर्तव्य, दक्षता। ऑफिस कैसे जाते हैं? कर्तव्य की भावना से। उसी प्रकार से जो कार्य है आध्यात्मिक, वो हमें कर्तव्य की भावना से बहुत कठोरता से करने का प्रयास करना चाहिए, सेवा, साधना, जप, तप आदि। और दूसरा है अपना जीवन रेगुलेट करना चाहिए। निश्चित समय पर उठना है, निश्चित समय पर सोना है, निश्चित समय पर खाए, हाँ, रेगुलेट रखे अधिक से अधिक। कलयुग में रेगुलेशन बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन दूसरा स्टेप है कि हमारा जीवन हम रेगुलेट रखे। और तीसरा है फल से अनासक्त रहे। हाँ, कोई भी हम कार्य करते हैं, सबसे पहले हम उसकी रिजल्ट्स, फल की अपेक्षा करते हैं, तो फलों से अनासक्त रहने की भावना रखें। और चौथी चीज है अपनी जीभ का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। कैसा करें? सोच समझ कर। जीभ से दो कार्य करते हैं, एक तो बोलते हैं और दूसरा खाते हैं। हाँ, तो रजोगुण बहुत तीव्रता से प्रवेश करता है जीवा के माध्यम से। इसलिए अधिक से अधिक हो सके कृष्ण प्रसाद और भी सात्विक भोजन खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि रजोगुण का ये गुण है। और पांचवा है दूसरों को आदर देने की भावना विकसित करनी चाहिए हमेशा, तो फिर हम कभी रजोगुण में पड़ेंगे नहीं। हाँ, ये पांच चीजें यदि करते हैं तो वह व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो सकता है। और सत्वगुण में भगवत भक्ति बहुत ही सरल हो जाती है। उसके लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है भक्ति का अभ्यास करना, और फिर वो व्यक्ति फिक्स हो जाता है। एकेह गुरु नंदना तस्माद एकेन मनसा, उसके अंदर दृढ़ता आती है और एकाग्र हो जाता है। जैसे अर्जुन को केवल पंछी की आंख ही नजर आ रही थी, अब वैसे हम फिक्स हो जाते हैं। ये सब का सार यही है कि हम सब छोड़कर क्या करें, शुद्ध भक्ति के कार्यों पर ध्यान लगाएं। शुद्ध भक्ति के कार्यों को करेंगे फिर बाकी चीजें हमारे जीवन से निकल सकती हैं। इसलिए भीम का उदाहरण सामने रखना चाहिए। भीम का क्या उदाहरण है, कैसे हम इस काम रूपी शत्रु से बच सकते हैं? तो भीम और ये जो पांडव जो वनवास में थे, तो वो एक चक्रा गांव में गए थे। आपने वो सब स्टोरी सुनी होगी कि उस गांव में बकासुर था, बकासुर गांव से बाहर, और गांव का हर एक परिवार का एक व्यक्ति हर रोज भेजा जाता था और बैलगाड़ी भोजन से लदी हुई होती थी, और वो जाकर जो भी लेके जाता था वो असुर राक्षस उसको भी खा लेता था, भोजन को खा लेता था। तो ये कुंती आदि जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे थे, वो ब्राह्मण की पत्नी और ये सब चर्चा कर रहे थे, बहुत दुखी थे। तो कुंती ने देखा कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला इस प्रकार से है, आज हमारा टर्न है उस आसुर के पास जाने के लिए। पत्नी कह रही थी मैं चली जाती हूँ, पति कहते नहीं नहीं तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं जाता हूँ, आज अपना जीवन सैक्रिफाइस करता हूँ। कुंती कहती है नहीं, आज आप में से कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो कौन जाएगा, मेरा पुत्र जाएगा, भीमसेन जाएंगे। भीमसेन तो तैयार थे, भीम को प्रसाद देखे तो फिर कुछ और नहीं चाहिए, आसुर हो या आसुर का बाप हो। तो भीमसेन ने पूरा बैलगाड़ी भरा हुआ था अलग अलग भोज्य पदार्थों से, और भीम जी गए पीछे देखते जा रहे थे क्या क्या प्रसाद सुगंध आ रहे थे। भीमसेन पहुंचे, आज भी वो लीला स्थली है, भीम गए वहां उस आसुर के वहां, और आसुर तो किसी कोने में होगा, ये गए उतारा वो सब कुछ और खुद क्या करने लगे, खाने लगे, महापुरुषा ने गोविंद। तो भीम जी खाते जा रहे थे, एक आग से खाते जा रहे थे, आसुर आ गया पीछे से, अरे पहली बार मैंने देखा है। हर व्यक्ति डर के मारे खड़ा हो जाता था भोजन के साथ, खुद भोजन बना बनकर, और आज ये कौन सा व्यक्ति है जो मुझसे पहले खा रहा है, और फिर आसुर आ गया पीछे से मारने वाला था, तो एक हाथ से पकड़ते थे मारते थे उसे, एक हाथ से क्या करते थे खाते रहते थे। तो आचार्य कहते हैं इसी प्रकार से इस काम को डील किया जाता है, एक हाथ से क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक हाथ से क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरे हाथ से जो भी असुर आए, कोई भी डिमांड आए, थप्पड़ खड़ा, आज एक काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, कोई टिकेगा नहीं। बकासुर टिका क्या उनके सामने, हम भीम जैसा डिटर्मिनेशन चाहिए, और भीम जैसा बल भी चाहिए। बल कैसे आएगा, भक्तों के संग से, भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम को सुनने से बल आएगा। फिर ये काम हो, क्रोध हो, जो भी असुर हो, उसको हम उससे हम छुट्टी ले सकते हैं। प्रभुपाद एक बार कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि मेरा भारत महान, क्या कहते हैं सारे लोग, प्रभुपाद कहते हैं क्यों मेरा भारत महान है, किसी ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद कहते हैं मेरा भारत इसलिए महान है कि वहां के लोग रोज 4 घंटा भागवतम को सुनते हैं। कितने घंटा, तो हम ठीक है 1 घंटा हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि काम की जो इच्छा है बहुत प्रबल है, लेकिन केवल भगवान की कृपा से ही संभव है इस पर विजय प्राप्त करना। हाँ, तो हमने ययाति आदि का चरित्र वर्णन किया था, और हरिदास ठाकुर ज्वलंत उदाहरण है भगवान की कृपा से। हाँ, हरिदास ठाकुर ऐसे डिवोटी हैं, वो माया को भी यस और कृष्ण को भी यस। हम माया को यस, कृष्ण को नो। माया को क्या कहा हरिदास ठाकुर ने, यस, और कृष्ण को भी बोला यस।
तो वो तो परफेक्ट भक्त का उदाहरण है। तो लेकिन हम प्रभुपाद ने जो हमें विधि दी है नित्य भागवत सेवाया और हरिनाम आदि का विभिन्नता से सहारा लेते हैं, अब इससे मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।